दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंतराल के बीच विश्व भर में 5 से 6 भूकंप आए, जिसमें जापान में 2 भूकंप, म्यांमार, वानुआटू, दक्षिणी फिलीपींस और फिर इक्वाडोर में भूकंप आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये एक असामान्य बात थी और क्या इससे कुछ गंभीर संकेत मिलते हैं, या फिर प्राकृतिक स्तर पर ऐसा होना असामान्य नहीं है। इसी विषय में और जानने के लिए हमने भारत में नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत से बात की।
देखिए, ये बात सही है कि हमारे पास, जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो पहले भूकंप हमें एक इंडो बर्मीज आग, जो इंडिया का इंडियन पाथ प्लेट बाउंड्री का पार्ट है, वहां पे एक भूकंप आया जो कि काफी बड़ा भूकंप था। 6.9 मैग्नीट्यूड, 6.9 का उसका मैग्नीट्यूड था। फिर उसके बाद हमने अर्थक्वेक, जापान में भी हमें एक अर्थक्वेक आया जो कि काफी, जो इनफैक्ट 2 अर्थक्वेक आए, और ये भी कहा गया कि साहब पहले वाले अर्थक्वेक ने शायद बट दूसरे वाले अर्थक्वेक को ट्रिगर किया, जो 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तो उसने फिर जो बड़ा अर्थक्वेक जो 7 मैग्नीट्यूड का था जापान में, उसको ट्रिगर किया, लेकिन वो एक अलग बात है, वो तो आसपास ही आए थे, तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद इक्वाडोर में भी अर्थक्वेक आया, उसका मैग्नीट्यूड शायद 7.8 मैग्नीट्यूड था। सबसे बड़ा अर्थक्वेक यही हुआ इस पूरी साइकिल में। तो देखिए, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि जो हमारा अर्थक्वेक प्रोसेस है या जियोलॉजिकल प्रोसेस है, टेक्टोनिक प्रोसेस है, वो एक साइकिल में ऑपरेट करते हैं। मतलब वो उनकी ना जो 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 ऑपरेटिंग साइकिल है वो इन टर्म्स ऑफ सेवरल ईयर्स होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कुछ दिन का एवरेज लेके या कुछ साल का एवरेज लेके आप कहें कि साहब अर्थक्वेक आने की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस इलाके में या पूरे विश्व में बढ़ गई है। आप एक छोटा सैंपल नहीं ले सकते हैं, आपको काफी बड़ा सैंपल इन टर्म्स ऑफ टाइम, आपको समय के हिसाब से, मतलब आप 100 साल का सैंपल लीजिए, 200 साल का लीजिए या 300 साल का लीजिए, जितना बड़ा अर्थक्वेक लेंगे, जितने बड़े अर्थक्वेक की बात करेंगे, उतना बड़ा आपको सैंपल लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मैग्नीट्यूड 7 की बात कर रहे हैं तो आप शायद 200-300 साल की बात करेंगे, 200-300 साल का सैंपल लेंगे, और अगर आप और भी बड़े अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड 8 की बात कर रहे हैं, तो आपको और भी बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता है कि आप एक छोटे से टाइम को लेके आप जो है ये कह दें कि साहब अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो जो पॉइंट है मेरा वो कहने का ये है कि आपको लॉन्गर टाइम स्केल यूज करना पड़ेगा। आपको जो स्टैटिस्टिक्स जो है या जो 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 प्रोबेबिलिटी है वो इट इज ऑल गेम ऑफ नंबर्स, आप उसको एक छोटे सैंपल को लेके नहीं कह सकते हैं।
मतलब संक्षिप्त में अगर हम समरी करें तो आपके कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से मूव करे कि 3-4 भूकंप एक टाइम पे ऐसे आ सकते हैं, मतलब एक हफ्ते के अंतराल में। मतलब ये जो हुआ है पिछले 5-10 दिन में, ये बहुत जिसे कहते हैं बहुत अनयूजुअल, इसमें कुछ नहीं है।
मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इनमें जब केवल आप स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप इस बात को नहीं कह सकते हैं। अभी तक मेरे पास कोई फिजिक्स नहीं है जिसके बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि साहब इनमें क्या कनेक्शन है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आप हिमालयन रीजन को देखो तो हिमालयन रीजन में 50 सालों में, यानी कि 1897 से लेकर 1950 तक 4 बड़े अर्थक्वेक आए वहां पे हिमालयन रीजन में। अगर उससे पिछले 50 साल को देखें तो एक भी बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, उसके अगले 50 साल को देखें तब भी कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। तो यू नो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा पीरियड आपने 50 साल का लेके ये सोचो कि साहब वहां पे हिमालय में अर्थक्वेक खूब आते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, केवल उस 50 साल के सैंपल को लेके 1897 से लेके 1950 तक, तो वो स्टैटिस्टिक्स आपकी गलत हो जाएगी
जी।
तो आपको लॉन्गर टाइम लेना पड़ेगा अगर आपको स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है
जी। ये बताइए कि ऐसा भी माना जाता है कि जो भारत का उत्तरी भारत का क्षेत्र है, या पूरा वो ले लीजिए वो हिमालयन क्षेत्र, वहां पर एक भूकंप आ सकता है क्योंकि ओवरड्यू है टाइम स्केल के हिसाब से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
वहां पर भूकंप आए हैं, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा पार्ट है जिसमें उत्तराखंड हिमाचल वाला पार्ट शामिल है, और अगर आप कश्मीर में जाएं तो कश्मीर में भी बड़े भूकंप आए हैं, और वहां पे बड़े भूकंप और क्योंकि ये प्रक्रिया जारी है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट है उत्तर पूर्व दिशा में 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, वो प्रक्रिया जारी है। हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो दिखाते हैं कि साहब वहां पे स्ट्रेन भी, एनर्जी भी एक्यूमुलेट हो रही है, चाहे वो कश्मीर का इलाका ले लें या गढ़वाल कुमाऊं का इलाका ले लें। तो ये दोनों, ये इन सब चीजों को अगर साथ में रख के देखें आप, तो भूकंप नहीं आएगा ये कहना एकदम गलत होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एनर्जी बड़े भूकंप के द्वारा ही रिलीज की जा सकती है और कोई तरीका नहीं है। तो बड़े भूकंप तो वहां पे आएंगे, अब ये कब आएंगे और पहले कहाँ पे आएगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, वो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि भूकंप पहले कहाँ पे आएगा और कितना बड़ा होगा। और वो बस ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे इस इलाके में भूकंप आएगा, लेकिन कब आएगा, कितना बड़ा होगा, कैसे आएगा, उसके बारे में थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल होगा।
वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के प्रोफेसर CS दुबे ने हमें पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया।
जो संसार है उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है जगह जगह अपनी डिफरेंट स्पीड से मूव करती है और एक दूसरे के अंदर धंसती है। उसके धंसने से जो स्ट्रेस कंपोनेंट होता है, जब वो रिलीज होता है तब ये अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं। और ये सब जगह जो है अलग अलग प्लेट्स हैं, जहाँ पे ये अभी इक्वाडोर में या मान लीजिए नेपाल में अभी अर्थक्वेक आया या बर्मा में आया और मणिपुर में आया, ये सब अलग अलग अर्थक्वेक हैं और ये अलग अलग प्लेट्स के ऊपर हुए हैं, इसलिए कोई इनका एक दूसरे से लिंक नहीं है। जो हमारी जो जमीन है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये कई तरह की लेयर्स का बना हुआ है और इसकी जो ऊपर वाली परत लेयर है वो एक मैग्मा के ऊपर जो है एक फ्लोट कर रही है और ये मूव कर रही है डिफरेंट स्पीड से और डिफरेंट वेलोसिटी से, और ये जब मूव करती है तो एक दूसरे से टकराती है। जैसे इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशिया में, जो यूरोप के नीचे, यूरेशिया के नीचे जो है जाके टकराई, इससे पहले समुद्र था वो समुद्र गायब हो गया जिसे टेटियन सी बोलते हैं, और फिर ये जाके कॉन्टिनेंट जो है दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराया और उसके अंदर धंस गया, उससे जो है अपलिफ्ट हुआ और हिमालय जो है बनना शुरू हुआ। अब ये जो स्ट्रेस बनते हैं वो जहाँ पे ये घुसते हैं वहां पे जो फॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, और उसके ट्रांसफर जो होता है उसको डिफरेंट टाइप के फॉल्ट बोलते हैं। अब ये जो फॉल्ट हैं जब ये रिएक्टिवेट होते हैं या फिर ये इन पे स्ट्रेस रिलीज होता है तब ये अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं।
वहीं डॉक्टर विनीत गहलोत ने भूकंप के कुछ और संभवतः कारणों के बारे में बताते हुए कहा,
जो बड़े भूकंप के मुख्य कारण तो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर कहें तो वो वॉल्केनिक अर्थक्वेक है, जो ज्वालामुखी फटने की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं। जो तीसरी जो चीज अब डेवलप हो रही है या जिसके बारे में ज्यादा लोग अब ध्यान दे रहे हैं, वो ये है कि जितना हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जिसमें कि जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन है, हम लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या अपने जो वेस्ट फ्लूइड है उनको अर्थ में डंप कर रहे हैं डैम की रिजर्वायर की वजह से, भी ऐसा कहा जाता है कि रिजर्वायर भी जो है वो भूकंप को लाने में सहायक होते हैं। मतलब वो भूकंप को लाते तो नहीं है लेकिन ये जरूर है कि भूकंप उनके उनकी वजह से ट्रिगर हो सकता है, तो वो एक वो है। लेकिन जो फ्लूइड एक्सट्रैक्शन या फ्लूइड एक्सप्लोरेशन जो तकनीक है उसकी वजह से छोटे छोटे भूकंप जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो सब छोटे भूकंप हैं, वो बड़े भूकंप नहीं है।